चलाया कि अनुभव वास्तव में अगर देखा जाए तो अनुभव कोई दुनिया में अनेक प्रकार का होता है। कोई गृहस्थी जीवन का अनुभव सुनाए, कोई करोड़ कमाने का अनुभव सुनाए, कोई करोड़ गंवाने का भी अनुभव सुनाएगा। कहते हैं सट्टे का जो व्यापारी होता है ना, वो सेकंड में करोड़ कमाता है और सेकंड में करोड़ गंवाता है। परंतु यहाँ तो सिर्फ कमाई करने की बात है, गंवाने का कुछ भी नहीं। एक रत्ती मात्र भी जिस दिन से हम ज्ञान में आए ना, वो कहते हैं आज का जो सेकंड बीता वो फिर हाथ में नहीं आएगा। इसलिए बाबा कभी कभी मुरलियों में कहता है ये सेकंड भी हजार सालों के समान है। परंतु हम लोग ये जीवन की घड़ियां कैसे गंवाते हैं। मैं जब ज्ञान में आई थी तो मैं 16 बरस की थी और अब मेरी लाइफ है 79 की। मुझे एक एक 8 बरस हुए ज्ञान में आए। तो जब मैं ज्ञान में आई थी तो यज्ञ में कुछ भी नहीं था, ये छोटा सा हाल भी पीछे बना था। बाबा ने एक दिन रबड़ी बनाई थी, रबड़ी बनाई और इस हाल में सोचता था 150-200 बैठ जाएंगे और बाबा इस असेंबली पर बैठ के वो रबड़ी बांटना चाहता था। अब वो हमारी जो भोली ने शरीर छोड़ दिया ना, भोली दादी, तो उसने रबड़ी जो बनाई वो पतली। अब पतली तो पत्ते में रुक नहीं सकेगी ना, तो बाबा जितना प्यारा था ना उतना फिर स्ट्रिक्ट भी रहता था। बोला बच्ची ये रबड़ी किसने बनाई है? बोला भोली। बोला भोली को बुला के ले आओ। भोली ये रबड़ी मैं पत्ते में कैसे दूं बच्चों को, इसके लिए तो कटोरियां चाहिए। तो बाबा इतना मीठा था, इतना मीठा था कि जिसका अनुभव कहते हैं ना, मीठा जो खाए वो उसका अनुभव करे। बाकी क्या, हाँ आप कहेंगे हाँ होगा मीठा, परंतु उसी समय जो इस यज्ञ में बेगरली लाइफ शुरू हुई थी तभी मैं इस यज्ञ में आई हूँ। खाने को भी पूरा नहीं था। एक दिन मम्मा को बाबा ने कहा कि आधा आधा रोटी, उसमें वो जो लाल शुगर होती है ना जिसको हम लोग गुरु कहते हैं पर पतली होती है, वो डाल के आधा आधा बगैर तेल के रोटी मम्मा ने हम सबको लाइन में दी थी, बस ये है तुम्हारा खाना, क्योंकि खाने को कुछ नहीं था। पर अभी खाने को बहुत है पर मजा उतना नहीं है। जो असली हमारे बाबा मम्मा थे, हाँ बाबा को तो हम कहते थे कि दुनिया में कहते हैं ना, किसी के नाक में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी के गले में हीरा, परंतु हम कहते हैं हमको तो मिला है सच्चे से सच्चा हीरा, ऐसा हीरा जो कभी न टूटे न फूटे। वो हीरा तो एक दफा करोड़ों का भी अगर थोड़ा सा धक्का लग गया ना तो खलास, उस पाई एक पाई वसूल नहीं हो सकती है। एक दफा जब बेगरी पाठ था तो बाबा ने कहा कि बच्चे कम से कम बताओ कौन रोटी खाएगा। अभी समझो ये दो रोटी खाती है, तो इस बेचारी ने आधा कम किया, पेट में भूख भी तो लगती ना। हाँ, अब कोई तीन खाता था, उसने बोला अच्छा बाबा दो खाऊंगा। क्यों? उस समय क्या होता था, जिस दिन सब्जी अच्छी बनी ना तो ये दो खाने वाली तीन खा गई। उसी समय हिसाब रहता था रोटियों का। अभी एक एक जना अगर आधा पौना रोटी ज्यादा खाए तो अब बताओ कितनी तकलीफ हो जाएगी। और भाजी अच्छी नहीं तो सभी अगर आधा कोई आधा कोई पौना रोटी कम खाए तो रोटी कहाँ जाएगी, हो जाएगा ना नुकसान। तो बाबा इतना होशियार था, व्यापार में व्यापारी होशियारी था, गृहस्थी चलाने में गृहस्थी। बाबा इतना होशियार था, कहता था इतना बेसन का इतना मोन दाल बनेगा, इतनी चक्की बनेगी और इतनी सारी सभा को एक एक चक्की मिलेगी। जो हिसाब आज कोई जो हो ना हलवाई हो ना उसको भी करना नहीं है, इतना बाबा होशियार था। और ये होशियारी उसको दी किसने? ऊपर वाले ने। मैं तो आज तक वो मुरली याद करती हूँ कि जब बाबा मुरली चलाता था ना तो शिव बाबा ऐसे ब्रह्मा के लिए कहता है, अब कहता ब्रह्मा के मुख से था, तो उस समय इतना मजा आता था। यानी ये एक हुआ ना अपनी बात करना, पर वो लगता नहीं था। कई लोग सोचते थे हम देखें कि इसमें शिव बाबा कैसे प्रवेश होता है और कैसे भागता है। जैसे हमारी आत्मा शरीर छोड़ती है कोई पकड़ सकता है? डॉक्टर लोग कितनी कोशिश करते हैं शीशे के अंदर बंद करके, शीशा फट जाएगा। तो कहती है इंसान तू पैदा हुआ एक बूंद से, हम सब किससे पैदा हुए विचार करो, औरत जात विचार करो, एक बूंद से, और जब मरेंगे तो इतनी शिराक बनेंगे। ये सोचो हम है क्या, हमारी जीवन है क्या। कहते ना एक दिन एक राजा रास्ते में जा रहा था तो कोई साधु आया तो उसको गाड़ी में से उतर के उसको पाँव पड़ा। वजीर ने बोला तो इंसान है वो, मट्टी पाँव गंदा है। दूसरे दिन आया उसने बोला एक आदमी की, एक घोड़े की, एक फलाने की, एक जानवर की, ये सब शिष्या मेरे सामने लेके आओ एक एक पेटी में बंद करके। और जब सब लेके आए बोला अब इसको बेचने जा, जिस भाव में लेके आए हो ना उसे आधा भाव में भी बिके ना तो बिका के लेके आना। वो सब बिक गई पर आदमी की सिरसी जो थी ना, कहता था भूत लगेगा कोई मेरे दरवाजे में घिरे और आदमी की सिरसी देखे तो क्या करेगा, कहेगा ये भूतों का घर है क्या तेरा। तो कहा इंसान की वैल्यू है झुकने में, भले मैं कितनी भी बड़ी हूं पर मेरा काम है झुकना। एक होता है वो झुकना, दूसरा होता है ज्ञान में झुक जाना। तो बाबा कहता है झुकना तेरा काम नहीं, रुकना तेरा काम नहीं। रुक गए तो जीवन खलास। इसलिए टांग लड़का के भी चलो परंतु अच्छी जीवन का, क्योंकि आजकल बाबा इतना क्रोध के ऊपर कहता है। एक तो बाबा कहता है हर एक घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। बाबा की वो हालत हो गई थी कि जब पहले पहले गए ना तो सब सिंधी लोग शाहूकार गए थे अपने घर की मशीनियां सिनाई, उस समय सस्ती थी, वो सब बाबा ने वो सब बेच बेच के बेच बेच के सारा घर खाली किया बच्चों को खिला के, ताकि मेरे बच्चे भूखे न मरे। क्योंकि कहीं शाहूकार आए कोई बेचारे ऐसे वैसे भी आए, पर तू बाबा तो सबको ऐसे थोड़ी, तेरे को दाल खिलाएंगा उसको भाजी खिलाएंगा सबको एक जाए। एक दिन बाबा के भंडारे में सिर्फ चार आने जाकर बचे। ये शांतामणि दादी जो अभी हॉस्पिटल में पड़ी है ना, वो कहने आई बाबा को बाबा आज तो भंडार में सिर्फ चार आने बचे और यहाँ 250 आदमी खाने वाले, सिर्फ सूखी रोटी खाओ तो भी। हमारे कहा बच्चे सबको बोलो योग लगाओ। और बाबा के यज्ञ का ये नियम होता था, यहाँ एक लोहे का तवा टंगा रहता था, तभी टेप रिकॉर्ड नहीं थे, लोहे का और उसके आगे एक डंडी रखी हुई होती थी। जब कोई डायरेक्शन देना होता था ना तो वो डंडी बजाते थे, तो सब पूछते थे भाई क्या है क्या है क्या है क्या है, फिर डायरेक्शन देते थे। आज खाना देर से मिलेगा नहीं तो सब रड़ी मारेंगे, एक एक कहेगा ढेर हो गई भूख लग, ढेर हो गई भूख लग, अब क्या करें बेचारे। बाबा भी क्या करे, बाबा ने कहा बच्चे योग करो आप ही सब कुछ ठीक हो जाए। और कहते हैं 12 बजने में 10 मिनट था तो एक मनी ऑर्डर वाला आया और वो पैसा दिया और उसी से राशन आया और सबको खिलाया। एक दिन बाबा खाना खा रहा था इस यहाँ ब्रह्मा भोजन छोटा मोटा, तो किसी जैसे आप लोग सभी हो, किसी ने बोला थोड़ी और दाल दो ना, तो बाबा ने बोला दाल दो ना, वो बाबा दाल है ही नहीं। बाबा को इतना खराब लगा कि वो अपनी थाली बिना खाए उधर छोड़ के चला गया, वो सहन नहीं कर सकता था मेरा कोई बच्चा भूखा पड़े। ऐसी हालत, एक दफा आधी रात को किसी को सपने में आया कि इतना पैसा मैं यज्ञ में दूं, और वो यहाँ माउंट अबू में रहता था, उसकी एक बहन हमारे पास हांगकांग में रहती थी, उसने बोला वो आधी रात को मेरे पास आई, बोला ये पैसा है और तुम जाके अभी दे के आओ। उसने बोला बाबा सुबह होने दो, तुम पैसा बोला मैं अब भी नहीं निकालू, बेबी कल मेरा मन बदल जावे तो, इसलिए मैं अब भी दूंगा। तो बाबा इतनी टचिंग करता था, प्यार भी करता था, सुधारता भी था, बोलता था भी था, कभी कभी डांटता भी था, ऐसी हालत देखता था, परंतु फिर जिगर में ये प्यार था कि ये शिव बाबा के बच्चे हैं। कि जब भी बाबा को पहले पहले साक्षात्कार हुआ था ना, तो बाबा क्या करता था, ये राधा उसकी बहू थी, ये भी शांति, ये भी वो शांति, सबका नाम ही नील है। उसकी जो बहू थी वो ऐसे आगे घूंघट नहीं करते थे, आगे जमाने में घूंघट करते थे ना, तो वो घूंघट कर कहती जिस दिन बाबा में प्रवेशता हुई मैंने तो अपना मुंह खोल दिया। अभी थोड़ा समय हुआ बॉम्बे में थी बाबा की बहू, फिर उसने शरीर छोड़ा। वो कहती थी बाबा का जो अनुभव था, वैसे भी मेरा ससुराल जो था ना वो बहुत दानी पुरुष था और चोर को चोर नहीं कहना चाहता था, और मुझे पता है इसने मेरी चोरी तो की है पर मैं इसको पकड़ूं कैसे। तो एक दिन बाबा हीरे का व्यापारी था, तो उसके पास दो छोकरे छोटे छोटे काम करते थे, एक ने क्या किया दो हीरे चोरा के अपने भाई को दे दिया, बेटा हीरा उठा लगे, नहीं बाबा। इसने क्या किया सीधा वो उसके भाई के घर में गया, बोला वो तुम्हारा छोटा भाई जो दो हीरे कल रखे गया ना वो उसने मांगा है, अब वो क्या करे बेचारा। उसने बोला नहीं वो तो मेरे को कह गया कि ये हीरे रख देना, किसी को देना नहीं है। बाबा ने बोला नहीं पर मेरे को बोला है, मैंने अपने भाई को दिया है, तुम तो जाके ले गया। अभी दूसरा क्या करता, उठा के उसको पुलिस में दे देता ना। फिर आके उस बच्चे को बाबा ने समझा, देखो बच्चे तुमको कुछ भी चाहिए मेरे से मांगो, मैं दूंगा तेरे को। बाबा ऐसी युक्ति से किसी को पकड़ता था कि चोर को चोर भी न कहे और उसे सामान भी, प्यार से निकलता। तो इतनी खाने की शक्ति होती थी यज्ञ में। एक दफा मैं आई तो ये भोली दादी जो थी ना उसने क्या किए थे, वो छोटे छोटे नहीं गोलियों जैसे आलू होते हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं, वो आलू आधे आधे काटे और जीरा डाला और उसमें थोड़ा पानी डाला क्योंकि तेल भी इतना नहीं मिलता था, और चावल और वो आलू थोड़े थाली में डाल के सबको देते थे खाओ। अभी तो यहाँ राजाई लगी पड़ी है, आप तो राजाई में आ गए, हम तो फकीरी में आए थे, पर उस फकीरी में बहुत मजा था। कहती है ना, जो सुख है फकीरी में सो सुख नाए अमीरी में। तभी अति इंद्रिय सुख था हम लोगों को, अति इंद्रिय सुख जो बाबा मुरलियों में रोज कहता है ना, सुनते हो ना, तो कोई कहता है अति इंद्रिय सुख माना ये कर्म इंद्रियों का सुख की मुझे इच्छा नहीं हो रही, क्या खाऊं क्या पीऊं क्या ये करूं क्या मैं वो करूं, नहीं। एक दफा बाबा की वो जो ब्राह्मणी आती ना, वो तो आना पड़ी थी, ये लच्छू भी तो आना पड़ी आई थी ना, थोड़ा थोड़ा बाबा ने इसको सिखाया, तो उस क्या किया, वो जो होते है ना बीट 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 होती ना, बीट के पत्ते बार हमारे यहाँ छोटे गार्डन में ही बनते थे ना बाबा की, जहाँ भूंगड़ी है ना, क्या कहते हैं वहां, तो उस वो उनको पता ही नहीं चला, उसने समझा साई भाजी है। अभी 8 दिन वो बाबा को पत्ते खिलाते रहे खाट, अब वो होते हैं मीठे, और बाबा कहती डायबिटीज। डॉक्टर बोले ये कैसे हो सकता है कि इसकी डायबिटीज क्यों नहीं कम होती है, तुम लोग इसको क्या खिलाते हो बताओ। उसने बोला बाबा हम तो साई भाजी खिलाते हैं। बोला साई भाजी लेके आओ तो मैं सीखू। बाबा ने बोला तेरा ये साई भाजी है, तभी से फिर बाबा के पास कोई फ्रूट लेके आवे कोई कुछ लेके आवे ना, तो वो सोचेगा बाबा खावे। जैसे आप सेंटरों पर जाते ना, कहते हैं बहन जी का, अब बहन जी के सामने कोई जज्ञासु बहुत मीठा आ गया, उसने वो आम दे दिया उसको, आपको क्या होगा, देखा मैंने तो बहन जी के लिए लाया, बहन जी ने उसको, अरे वो बहन वो शिव बाबा का अति प्यारा बच्चा है ना, ये तो हमारी सेवा है ना, अपने पेट में से भी निकाल के जज्ञासुओं को खिलाए। आगे जमाने में बाबा के सामने जाते थे ना, गिट्टी खिलाता था, गिट्टी समझते है ना, जिसको आप लोग ग्रही कहेंगे सिंधी में हिंदी में, तो हम बाबा के रूम से घड़ी घड़ी क्रॉस करते थे सुबह शाम। बाबा कहते आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे आओ बच्चे कह के बाबा खिलाता था, और लच्छू बैठ जाती उसको बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो रोटी बनाती थी इतनी, अभी हमारे जैसे के लिए तो एक एक ग्रही हो जाएगी, और वो बेचारी कितनी रोटी पकाती थी, अब पीछे तो दूसरा आ गया कोई तीसरा, बाबा ये सोचता ही नहीं था, और लच्छू की हिम्मत नहीं पड़ती थी, बाबा को बोले इनको नहीं खिलाओ, खबरदार बाबा उसको कहेंगे निकल जाओ मैं आप ही रोटी पकाऊ मैं जानता हूँ, तो इतना बाबा स्ट्रिक भी रहता था, और खिलाता कैसे था, हमको आज भी वो स्वाद आता है। बस एक भाजी होती थी और एक ये रोटी बाबा खाता था। एक दफा हमारी दादी सावित्री राम, जिस आप पहचानते दादा राम सावित्री कोई पहचानता है, पहले पहले ही यज्ञ में आए थे, तो उनके सारी फैमिली जो थी ना वो मतलब प्योर तो थी नहीं, वो खुद प्योर थे, तो उनके बच्चों ने उसको बोला कि हम यहाँ आवे, बेचारी सोचने लगी ये पवित्र तो है नहीं, ये तो मेरे लिए भाई पाप का काम हो जाएगा ना, अभी नाक उल्टा भेज दूं, परंतु कहती है बाबा को ऐसी टचिंग आई कि बाबा ने कहा सावित्री बच्ची तुम्हारी फैमिली में से जो भी बॉम्बे में है ना सबको बुला लो भले आ जावे, तो खुश हो गई, बोला पर बाबा, बोला पर नहीं बोलो, जब मैं कहता हूँ बुलाओ तो मैं जिम्मेवार हूँ उसका, बोला। और वो उसका जवाई आया, वो कहता था ये दरवाजे के अंदर जब बाबा सरफ पांव रखता है ना तो ऐसे लगता है जैसे महाराजाओं का महाराजा अंदर आ रहा है, नहीं तो पहनता था तो यही धोती था, चंपल भी नहीं पहनता था बाबा, दादा बाबा वो खराबा समझते ना लकड़े की, आगे जमाने में जो मंदिरों में पहनते थे, हाँ खड़ा कहते थे बाबा, वो पहनता था, और बाबा का पांव था नाए नंबर का, जो भी बहन देखती थी ना वो उसको भी भेज देती थी। इतना बाबा का वो था। देखो बाबा की औरत ने शरीर छोड़ा एक चपटी, भोगना नहीं भोगी। और बाबा जब शरीर छोड़ता है ना, तब से पहले कुछ दिन बाबा ने गोली चलाई थी। अरे हार्ट अटैक का मौत तो कितना मीठा होता है। और एक दिन बाबा ने सचमुच क्या किया कि किसी को लच्छू को बुलाया, किसको बुला कि देखो आज मैं जल्दी क्लास कराऊंगा। बाबा क्यों बुलाए पूछो नहीं, अभी खाना भी पूरा नहीं हुआ था। बेल बजा, सबने आवाज सुना भी क्या है क्या है। वे बाबा बोलता है आज जल्दी क्लास कराएगा। देखो बाबा को प्रेरणा कैसे आती है। और बाबा कहते हैं आ गया फटाफट, जो जितने भी थे घर वाले सब आए क्लास सुनने। और बाबा वैसे कहता था गुड नाइट, उस दिन का अच्छा बच्चे छुट्टी। तो भी किसी के मेमोरी में ये नहीं आया कि बाबा आज छुट्टी क्यों कहता। और बाबा यहाँ से सरफ पलंग तक गया ना, तो उसको हार्ट में तकलीफ, और 5 मिनट भी नहीं लगे। और वैसे यहाँ दीदी रहती थी, दीदी को सब पहचान देना, दीदी रहती थी। उस समय दीदी एक गांव में गई थी, तो कुमार का दादी किस काम से इधर आई थी। तो जिस समय बाबा ने शरीर छोड़ा ना, तो उसका हाथ में सारी शक्ति भर के गया था। तभी फोन नहीं थे, बाबा ने शरीर छोड़ा गांव गांव में कैसे पता चले। तो एक गांव के अंदर एक छोटा सा छोकरे ने बोला कि तुम्हारे बाबा ने ना रात को शरीर छोड़ दिया। वो कहने लगे तो इंसान है ऐसा क्यों बोलता है। बोलता है नहीं बहन दादी जी मैं सच कहता हूँ, वो बाहर वाले सब बोल रहे, क्योंकि उसी समय कुछ टेलीफोन कुछ तो था ही नहीं ना। वो बेचारी दौड़ती दौड़ती आई थी, गांव से आना भी सहज थोड़ी था, तभी प्लेन थोड़ी थे, ट्रेन भी इधर से चेंज करो उधर से चेंज करो, धक्का खाओ धुक्का खाओ, तभी जाके बेचारी आके पहुंची। और दादी की पहले दीदी की पहली पहली ये बात रहती थी सभी को जो आए थे ना, बाबा के शरीर छूटा 3 दिन तो रखा गया ना, इधर उधर से सब लोग इकट्ठे हो जावे, तो दादी बेचारी दीदी सबको ऐसे बैठी रहती, न रोती थी न हंसती थी न बोलती थी। सबने बोला इसको रुलाओ रुलाओ, नहीं तो ये अंदर में उसको क्योंकि पागना ली ना फेट आ जाएगा, इसको रुलाओ। वो बिल्कुल रो रही थी, ऐसे देखती रहती थी। आखिरी बड़ी मुश्किल से उसको रुलाया गया की अंदर में, और फिर उसका एक ही मंत्र रहता था, बाबा चला गया आप लोग सभी आओगे ना, बाबा चला गया अभी आप लोग सब आओगे ना, हमारा यज्ञ खाली तो नहीं हो जाएगा ना, इतना उसको डर था। तो ये बाबा ने इतना बेगरी पार्ट बजाते, आज देखो पहले ये हाल देखते हैं ना, पुराना जो पुराना, अभी तो इसको नया कर दिया है, और बाथरूम अभी तक वही पुरानी है 60 बरस वाली। उसमें हम सब आते थे स्नान करते थे, और जो पंजाबी वगैरह होते थे ना वो तो आधी रात से लेकर सुटका मारते थे कपड़े को, जब भी बाबा जिंदा था। और हम सिंधी लोगों को तो बबा खटिया देता था, हम 8 जने आए थे और वो उसको पट्ट में सुलाते थे। अभी 60 जने एक बाथरूम में स्नान करेंगे तो कैसे करेंगे, जब 10 बजे रात को शुरू करेंगे तभी सुबह तक पूरा होगा नहीं। तो ऐसी हालत होती थी, ऐसी हालत होते हुए भी बाबा ने बस एक ही बात सोची, यज्ञ चलाने वाला वो है, मैं कौन हूँ। कभी कभी आजकल भी आप देखेंगे ना शिव बाबा जैसे बोलता है कि ये ब्रह्मा बाबा भी क्या है, अब बोलता है ब्रह्मा के मुख से है, बाबा के सुनो अच्छी तरह मुरली के तो मालूम पड़े ना। बाबा कहते श्री बाबा कहते अरे ये ब्रह्मा कहाँ से आया, ये मैं न होता तो ये कहाँ से आते। और हम कहाँ से आते, हमारी वैल्यू क्या थी? ये ताकत है हमारे लिए, ये ताकत हमको किसने दिया? वो सब लोग कहते ना हमको तो स्वर्ग की बादशाही चाहिए, हम कहते बाबा मुझे बादशाही नहीं चाहिए, मुझे यही बादशाही बस, हमको एक बाथरूम जितनी कोठी मिलेंगी ना मैं उसमें पकाऊंगी खाऊंगी सोऊंगी, ये मेरी राजाई के बराबर न। आज के दुनिया की मुझे राजाई चाहिए न मुझे कल की दुनिया की, क्या है राजाई में? कहते हैं एक जो बाबा मुरली में रोज कहता है दे और दे के सन्नमंदों को छोड़ो, ये हमने पॉइंट कहाँ तक धारण किया है। चलो दे के सन्नमंदी किसको नहीं भी होंगे, ये मोटी दे ने तो सबको सताया ना, है ना? हाँ तो छोड़ा है हमने नहीं, तो फिर बाकी क्या करते हैं हम लोग? हाँ एक बाबा कहता है मौत सामने खड़ा है, दिखाई पड़ता है, मैं मुरली पढ़ती हूँ ना, मैं कहती कहाँ है मौत? वो मेरे जगह तो बोलते है पीछे खड़ा है तेरे, है ना? कहती है मौत तो सामने रखोगे ना तो ये दुनिया के सभी जो बातें है ना वो खलास हो जाए। मौत सामने रखो, विनाश सामने रखो, विनाश की सीन तो अभी आप लोग देख ही रहे है ना, सारी दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहा है, कहाँ पानी पड़ता है कहाँ पानी नहीं है, आदमी भूख रहे हैं, गर्मी 50 डिग्री और न पानी है न फैन है, ये विनाश की निशानियां नहीं है तो कभी भी कैसे होगा, किस तरह से होगा? आज जो दो रोटी हमको मिल रही है ना, कल ऐसा बाबा कहता था ऐसा समय आएगा तुम 1 लाख का हीरा देंगे ना तो 1 गिलास पानी का नहीं मिलेगा। अभी हमको हीरा प्यारा लगेगा या पानी? कहते हैं ना खाने बगैर इंसान जी सकेगा परंतु पानी 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 कर ऐसा हो जाएगा। एक विनाश सामने रखो, एक मौत सामने रखो, ये एक मंत्र 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 याद करो, तो दे और दे के सन्नबंधों को छोड़ो। तीसरा ये मेरी अंतिम घड़ी है, दूसरी घड़ी मेरे लिए आएंगी या नहीं, यहाँ से मैं अपनी रूम तक पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, कोई है भरोसा? इतना हम जब निश्चय से चले ना, हाँ बस मुरली सुनिया, बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी, क्या था खोलम खोल याद नहीं रहेंगे, क्यों? कहते हैं सुनने वक्त सुनते पूरा नहीं हो, समझने वक्त पूरा समझा नहीं तो करने वक्त क्या करोगे, क्या करेंगे? हाँ भाई जी क्या करेंगे, ज्ञान में तो हम सब आ गए हैं, बहुत अच्छी तरह से आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह ज्ञान सुनते हैं, जहाँ तक जीवन में कर सकते हैं तो कर, मेरा मतलब ये नहीं तुम कुछ नहीं करते हो, ये तो जितना करना चाहिए उसके भीतर में तो हम अपने लिए भी कहेंगे, जैसे कहते हैं ना हर एक बाबा मूल्यों में कहता है भाई क्रोध नहीं करो, एक स्टोरी सुनाती है 9:30 बजे तक, कहती क्रोध तो सबसे खराब चीज है, काम छूट गया थोड़ा लोभ भी छूट गया, एक मोह और एक क्रोध ये दोनों भाई बड़े मजबूत है हमारे लिए, है ना? कहती तो कहते हैं एक साधु था, उसको 5 जो खराब आदमी होते हैं ना क्या कहते हैं वो मिलके कहने लगा इसको कब कैसे भी हम क्रोध जरूर करें, चलो कराओ देखो कैसे कराते। गए किसी ने उसको छेड़ा, किसी ने उसको कुछ किया, ओ बुदलू बेचारा योग अपनी तपस्या में बैठा रहा, आखिरी 4 चले गए 1 बच गया, उसने क्या किया कि एक छोटा बच्चा जो मट्टी में खेलता रहता है ना फकीरों के, उसको उठा के इसको बोला इसके ऊपर जाओ मट्टी लगाओ इधर करो इधर चलो उधर चलो उधर चलो, गया वो भी गया, उसने क्या किया बोला शायद मेरे को बच्चा नहीं है ना, भगवान ने ये बच्चा मुझे पालने के लिए दिया है, वो घर में ले गया, उसको स्नान कराया, पानी कराया, कपड़ा कराया। वो जो बदमाश आदमी थे उन्होंने बोला इसको तो गुस्सा आता ही नहीं है, अभी और क्या करे, कुछ करे ना ताकि इसको गुस्सा आ जाए। आखिरी में उसके अंदर गुस्सा, कहने लगा मुझे सच सच बताओ, ये हमारे सबके काम की स्टोरी है, हमको सच सच बताओ तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आता, इतनी मुसीबत डाली है फिर भी तुम चुप रहता। कहता देखो दुनिया में दिन कितने हैं, आठ, आठ दिन है ना, उसी में हम पैदा हुए, उसी में हमारी शादी हुई, उसी में हमारे पास बच्चे बाल बच्चे, दिन तो वही आते है ना, नवा दिन तो भगवान ने बनाया ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जीवन है ही आठ दिन, तो मैं क्रोध करके क्या करूँ, इसलिए मुझे क्रोध नहीं आता, समझा। उसने बोला अच्छा फिर मैं क्या करूँ, बोला तुम भी मेरे बाजू में बैठ, मेरे तरह बैठ के तपस्या कर। तो कहते हैं क्रोध हमारा नहीं जाता, उसकी निशानी क्या है, हमारे अंदर भी ऐसे नहीं, मैं कोई पहुंची हुई हूँ, पहुंचा हुआ यहाँ अभी तक कोई नहीं है, क्यों कि बाबा कहता है योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो सब्जी 10 मिनट में बने उसको स्लो एकदम रख दो तो 2 घंटा खाएंगे या नहीं खाएंगे, खाएंगे ना, फिर भी चल बने तो एक तो हमारा योग कोई पावरफुल तो लगता नहीं है, और दूसरी बात है कि जैसे कहते हैं योग से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, इस तरह ही जो हम हमें क्रोध आता है ना तो उसे हमारे किए कर्म सब खुलास हो जाते हैं। इसलिए हम सभी हम भी उसमें आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि कितना भी क्रोध को रोको ना। कहते हैं एक दिन एक तपस्या कोई आदमी तपस्या कर रहा था, तो इंद्र ने सोचा इसके तो कैसे भी करते मैं हिलाऊंगा नहीं तो मेरा तख्त ले लेगा। वो गया और वो तपस्या पूरी करके बेचारा फ्रूट की थाली रखी, इतने साल नहीं खाया, रख के वो गया स्नान करने, तो तब तक उसने क्या किया, वो थाली उठा के ना ले गया इंद्र। अब वो तो हो गया गुस्से में आग बम, इंद्र ने बोला बस 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 तेरी योग तपस्या सब खलास हो गई, तूने क्रोध किया ना सब खलास, अब ये ले फ्रूट की थाली, अभी मेरा तक टूटने वाला नहीं है। तो ये क्रोध जो है ना ये सबसे खराब चीज और आता हम सभी को है, रोक नहीं पाते। कहते हैं एक होती है आग, आग हमेशा ऊपर से जाती है, आग कभी नीचे झुकती है, अभी हमको भी क्रोध आएगा तो झुकूंगी मैं नहीं, मैं तो अच्छी तुम लोग सभी रंगो ऐसे बोलेंगे ना। तो कहती है एक है आग जैसा कलर साधुओं का, साधु जो कपड़ा पहनते हैं ना वो फायर जैसा कलर, और हम जब से ज्ञान में आए तो हमको मिली सफेद ड्रेस। बाबा ने ये सफेद ड्रेस क्यों दी, क्योंकि हमारे इंडियन में ये सिस्टम होती है कि आदमी जब मरता है ना, घर में मरे या हॉस्पिटल में मरे, घर में भी मरेगा ना तो रंगीन चादर वो नहीं ढकेंगे उसको, सफेद चादर कहाँ से भी भले पुरानी हो गए नहीं हो गए क्या भी हो वो ढकेंगे। तो ये हमारी मरने की निशानी है कि हे इंसान तेरे को 2 गज कपड़ा मिलने वाला है सर, और कुछ नहीं मिलेगा तेरा, मिलेगा मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। और साधु जो है उनको भी भगवान ने ये अकल सिखाने के लिए कहा है कि देखो तुम ऐसे आग में जलोगे, और जो बोधि है वो पहनते हैं राख जैसा रंग, राख समझते हैं ना, हाँ राख जैसा, उनको कहा है कि देखो तुम लोग मरोगे तो ये जल के ऐसी राख बनोगे। ये तीनों मिसाल हम सबके लिए, हम भी जलेंगे, राजा हो या महाराजा हो, त्यागी हो या तपस्वी हो या वैरागी हो, क्या वो ऊपर में उठेगा क्या, चाहे चंदन में जलाए चाहे लकड़ियों में जलाए, चाहे चूल्हे में जलाएगा, चाहे एक बोतल गाथरेट की डाल के जलाए, वो तो बहुत सस्ती पड़ेगी, पर जलेंगे तो सभी ना। कोई है बोले नहीं मैं नहीं जलूंगा, मैं तो ऐसे ही ऊपर उड़ के चला जाऊंगा। चले जाएंगे, जाएंगे नहीं जा सकते। तो ये तीन बातें भी याद रखो ना, तो भी हमारी जीवन अच्छी बनेगी। क्या? दो गज कपड़ा, फिर लगेगी फायर और फिर बनेंगे राख। बस और है क्या? हम है क्या? अभिमान हमको किसका है? हमारे एक कहते हैं ना, सामान 100 बरस का, भरोसा 1 सेकंड का नहीं। ये पेटियों की पेटियां भरी की भरी रह जाएंगी। हे इंसान, कहते हैं अरे भगवान तू कफन में जेब बना देता तो कुछ तो मैं ले जाता। तो बनेगा भाई, कफन बनाएंगे तो जेब बनेगा? नहीं बन सकता। मैं कहती भगवान ये तुमने भूल कर दिए, छोटी सी जेब तो बनाते, कहे वो भी तो जल जाएगी ना। तो इंसान तो क्या ले जाएगा? कुछ ले जाएगा? कभी किसने सोचा है? ये सब धरे का धरा इधर ही रह जाएगा। अभी देखो हमारी दादी कुमार का अरबों की प्रॉपर्टी बन गई, कोई कुछ ले गया? हमारा बाबा, हमारी मम्मा, जिसको हमने प्रैक्टिकल में देखा, मम्मा को जब कैंसर हुई थी तो मम्मा वो पिछली कुंड में रहती थी और यहाँ तक उसका जो श्वास उठता था ना, उसका आवाज आता था और बाबा ने शरीर छोड़ा। कहते हैं कर्म ऐसे करो, दिन भर मौत को सोचो कि 1 सेकंड न लगे। धरस हो जावे तो मीठा मौत कौन सा मिलेगा? मिलेगा तो हम सबको, पहले मुझे भी मिलेगा क्योंकि मैं आप सबसे बड़ी हूँ। इसलिए हमेशा ये सोचो कि मौत सामने खड़ा है, फिर किसी में अटकोगे नहीं, लटकोगे नहीं, फटकोगे नहीं। जो अटकता है वो लटकता, लटकता है जो फटकता। पीछे हम लोग देखो कोई बात हमारे सामने घर की कोई फैमिली की ऐसी आती है तो बदन ऐसे फटकता है जैसे आग से भी ज्यादा। कहते हैं ना चिंता और शिक्षा, एक होती है शिक्षा, वो तो एकदम आदमी मरा जान छूटी, और चिंता वो तो सेकंड सेकंड अंदर जला 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 के रख कर देती है। ये गृहस्थियों की हालत होती है, मुझे पता है। मैं गृहस्थी नहीं हूँ, ऐसे नहीं समझना मैं कोई गृहस्थी हूँ, मैं तो कन्या हूँ। तो इसलिए सारा दिन एक तो मौत सामने रखो, इसमें कोई खर्चा नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, और अंत घड़ी सुएगी। बाबा मुरली में आगे आगे जमाने में बुढ़ी लोग स्नान करती थी, कहती थी भगवान अंत घड़ी मेरी। मैं कहती अंत घड़ी जब आवे नहीं, अभी तो मरेगी थोड़ी, पर अंत घड़ी माना जो लास्ट की घड़ी हो ना, उसमें कोई मुसीबत ना आवे। अच्छा हम जाए तो उसमें कहते हैं कि भगवान तुमने मुझे चरणों में जगह दे दो, परंतु तुमने तो मुझे अंदर में जगह दे दिया। मैं कहती भगवान होशियार है, उसने सोचा चरणों में बैठेंगे, अब मैं आंख इधर करूंगी तो ये भागे, इसलिए अंदर में भागेंगे नहीं ना, इसलिए अंदर में बिठाया। कहाँ बिठाया हमको? चरणों में बिठाया, बिठाया चरणों। भगत कहते हैं चरणों में बैठे, और हमने भी कहा चरणों में मुझे जगह दे देना। उसने देखा ये बच्चे मेरे बड़े होशियार हैं, मतलबी है, जब मतलब पड़ेगा तो यहाँ से ठपा ठप भाग जाएंगे, इसलिए इनको अंदर डालो। अब भी निकले बाहर तो मैं देखूं कहाँ से निकलते। निकलोगे? निकल सकोगे? अब भी जो एक दफा फंस गए ना, वो नहीं भागने वाले, ना निकलना। हमको तो बाबा ने पहले दिन से वरदान दिया था, बाबा ने हमको राखी बांधी थी अपने हाथ से, कितने 60 बरस पहले, तब भी राखी अभी शुरू भी नहीं, बाबा ने कहा बच्ची तुम सदा के लिए, आज तक मुझे बाबा का हाथ में सिर में हाथ दिखाई देता, ऐसे हम पले हुए हैं, पल पल के अभी तो हम भी किनारे पे आके पहुंचे हैं, एक मिनट की बात है, इधर से उधर गए, खला ओम शांति।